हरे कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवद गीता में भगवान क्या मार्ग बताते हैं अपने तक आने का, भगवत धाम जाने का। तो ये एक श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आठवें अध्याय का पांचवा श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। करोर व सहिष्णु ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो हमने सुबह के सत्र में देखा, अंततः मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम इस भौतिक जगत के वासी नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के वासी हैं जो यहां फंसे हुए हैं। इसलिए जब तक हम यहां से निकलकर वापस अपने धाम नहीं पहुंचेंगे, भगवत धाम, तब तक अलग अलग योनियों में हमको भटकना पड़ेगा। कभी मनुष्य योनि, तो कभी जानवरों की योनि, तो कभी ब्रह्मा की योनि, लेकिन हर योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि झेलना पड़ेगा। तो वर्तमान में यदि हम चर्चा करने जा रहे हैं तो हम कैसे वापस भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, अंतकाल में मृत्यु के समय में जो मेरा अर्थात किसका, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये गारंटी कौन दे रहे हैं, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। गुजरात में सभी फोन पर या आप मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण। तो क्यों, जिससे हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, और जब कृष्ण का स्मरण होगा तो फिर अंतकाल में भी कृष्ण का स्मरण होगा। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, ठीक है अंतकाल में ही तो कृष्ण का स्मरण करने से लाभ है, तो अभी क्यों कृष्ण का स्मरण किया जाए, अभी मौज किया जाए, मजा किया जाए और बाद में कृष्ण का स्मरण कर लेंगे मृत्यु के समय पर। लेकिन अंतकाल में हमें कृष्ण का स्मरण तभी होगा जब हमारा चित्त पूरा जीवन भर कृष्ण का स्मरण करते हुए शुद्ध हो चुकेगा। तो ये स्मरण करना, स्मृति रखना, ये हमारे कृत्रिम रूप से हमारे हाथ में नहीं है कि हम जिसका चाहे वैसा स्मरण करें। जैसे हम देखें, जब कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, अचानक आपके सामने जैसे मान लीजिए मृत्यु खड़ी हो जाए, बहुत बड़ी समस्या, तो हमें किसका स्मरण आता है। कोई भी समस्या होती है तो हमें पहले सबसे पहले किसका स्मरण आता है, जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय हैं उनका स्मरण आता है, पापा मम्मी ऐसे बच्चे चिल्लाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जब बहुत महान कष्ट आता है तो हमें सबसे पहले उन्हीं का स्मरण आएगा जिनसे हमारा लगाव है ना? तो यदि हमने अपने जीवन का उपयोग भगवान श्री कृष्ण से लगाव उत्पन्न करने में नहीं अपनाया, उनसे लगाव उत्पन्न नहीं हुआ और भौतिक जगत में ही लगाव है, तो फिर स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय में भी भौतिक जगत का स्मरण आएगा, भगवान का स्मरण नहीं आएगा। जब अच्छी अवस्था में भगवान का स्मरण नहीं कर रहे तो फिर मुश्किल में कैसे करेंगे, तो वो संभव नहीं होगा। और जैसा यहां हमने पढ़ा कि भगवान अति शुद्ध है, अर्जुन कहते हैं परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, हे कृष्ण आप परम पवित्र हैं। तो क्या मतलब है पवित्र, क्या है अशुद्ध और क्या है पवित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम जब तक अशुद्ध हैं तब तक भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, तो क्या है वो अशुद्धियां। तो पहली कक्षा में एक माता बोल रही थी काम क्रोध लोभ मोह, तो छह प्रकार की अशुद्धियां हैं जो हम सभी के मन में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, अर्थात हर व्यक्ति को सामान्यतया अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं होती हैं जिनको काम कहते हैं, काम वासना। क्या है ये भौतिक इच्छाएं, इस शरीर को कंफर्टेबल, अधिक इंद्रिय जो है, शरीर किसका बना है, इंद्रियों का बना है, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, ये सब इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और फिर कुछ कर्मेंद्रियां हैं, पांच हाथ पैर इत्यादि। तो हर जीव जन्म से लेकर मरण तक प्रयास करता है अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को सुखी बनाने का, और उसका यही सोचना होता है कि जीवन में सुखी रहने का यही उपाय है, जिसके पास जितने इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं वो उतना ही सुखी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, सभी लोगों का जीवन इसी पे केंद्रित है। इसलिए अगर किसी को हम सोचते हैं कि ये समाज में संसार में सफल है, तो कौन, जिसका बहुत धनराशि है, जिससे वो इंद्रिय भोग के सभी साधनों को इकट्ठा कर सकता है, हम सोचते हैं वो सुखी है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति कैलकुलेशन है कि सुख का मतलब है इंद्रिय सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, अच्छा खाने से, स्वादिष्ट व्यंजन खाने से, अच्छा देखने से, सुंदर म्यूजिक सुनने से इत्यादि, ये सुख है। तो इस सुख को प्राप्त करने की हमारे अंदर अनेक 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 इच्छाएं हैं, इनको काम कहते हैं। और लोभ, मिलने पर भी हमारी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कभी हमको संतुष्टि नहीं होती है, इसे लोभ कहते हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है। तो इस तरह से काम क्रोध लोभ ये सब भाई भाई हैं, एक के साथ में बाकी सब उसके सगे संबंधी साथ में रहते हैं, काम क्रोध लोभ। फिर ईर्ष्या, जब हमारे अंदर काम होता है तो हमें दूसरे से ईर्ष्या होती है, अरे वो क्यों आगे बढ़ रहा है, उसको नीचे खींचो। तो वर्तमान समय हम देख रहे हैं पूरा माहौल ये छह पापमय भावनाओं से लिप्त है, सब एक दूसरे को काटने की और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सब पूरा माहौल स्वार्थपूर्ण है, सब केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, किसी को दूसरे का कोई नहीं पड़ा है। तो ये है कलमश, गंदगी। तो कैसे उत्पन्न हुई है गंदगी, तो कृष्णा भुलिया जीव भोग वांछा करे, इन अशुद्धियों का प्रारंभ होता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उनकी सेवा करने का, उस संबंध को भूलकर स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, तब हम ये सब अशुद्धियों से ग्रस्त होकर इस भौतिक जगत में हमारा पतन होता है। जैसे कोई कंपनी में नौकर है तो नौकर की भी इच्छा होती है, अगर मैं बॉस बन जाऊं तो कितना अच्छा हो, मैं खुद मालिक बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। तो वास्तविकता में एक ही स्वामी है सबका, एकल ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य, एक ही स्वामी है भगवान, बाकी सब उनके दास हैं। लेकिन हमारे सबके अंदर, सभी जो हम आत्मा हैं, एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान में स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसलिए हमें भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कुछ भाग है। भगवान की इच्छा शक्ति अपार है, वो जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति छोटी है, हम चाहते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वो हो जाए, हम उस पर निर्भर हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान किसी अन्य पर निर्भर नहीं है अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए। तो ये अंतर है हमें और भगवान की इच्छा शक्ति में। लेकिन क्योंकि हम जीवित हैं, हम भी चेतनशील हैं, इसलिए हमारी भी इच्छा शक्ति है। तो आध्यात्मिक जगत में सभी जीव भगवान की सेवा में रहकर परम आनंद में रहते हैं, लेकिन अगर अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके कोई जीव विचार करता है कि मैं क्यों भगवान की सेवा करूं, मैं क्यों स्वयं भगवान जैसा ना बन जाऊं, भगवान ना बन जाऊं, मैं स्वयं इंडिपेंडेंट अलग एक भोक्ता ना बन जाऊं, जब वो ऐसी इच्छा करता है तब तुरंत आध्यात्मिक जगत छोड़ करके उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। इस बात को समझाते हैं भगवान भगवद्गीता में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत समोहं सर्वभूतां सर्गे यान्ति परंतपः। इच्छा और द्वेष जब हम भगवान से करते हैं, इस भौतिक जगत में स्वयं भोग करने की इच्छा और भगवान से द्वेष करते हैं, तब हम इस भौतिक जगत में हमारा पतन होता है। तो ये मूल कारण है, ये सभी गंदगी का सभी बीमारी का मूल है, ये जड़ है। यदि हम इस जड़ को समझ जाएं और इस जड़ का इलाज करें, उस मूल को काटें, तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा एक ही साथ, एक पास। जैसे डॉक्टर होता है तो एक ही बीमारी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन जड़ है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। तो यदि डॉक्टर के पास जाएं और वो देखे कि हाँ ये मलेरिया है, तो मलेरिया के कीटाणु का नाश किया जाए तो सिर दर्द भी गायब हो जाएगा, उल्टी भी खत्म हो जाएगी, सब एक साथ हो जाएगा। लेकिन अगर सिर दर्द के लिए कुछ दर्द निवारक औषधि लेंगे तो थोड़े समय के लिए दर्द जाएगा, फिर दोबारा से दर्द आएगा, क्योंकि जिसके कारण दर्द है वो तो अभी बरकरार है। उसी तरीके से हम अलग अलग छोटे छोटे कष्टों का उपाय देख रहे हैं, लेकिन कष्टों का जो मूल है, इस भौतिक जगत में हमारे आने का जो कारण है, वो है हमारे में खुद भगवान बनने की इच्छा। इसलिए आप देखिए इस भौतिक जगत में सब स्वामी बनना चाहते हैं, किसी से बोलिए सेवक बनना है कोई पसंद करेगा? कोई सेवक नहीं बनना चाहता, सब बॉस बनना चाहते हैं। तो ये लक्षण है हमारी बीमारी का। हालांकि हम सेवक, हम कोई बॉस नहीं है, सब किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा है वो भी किसी न किसी की सेवा कर रहा है, कोई बॉस नहीं है। हम कुछ लोगों की सेवा ले रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो केवल सेवा ले रहा है और किसी की सेवा नहीं कर रहा है, कोई है? प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जब इलेक्शन होता है तो वो लोग जनता के पास जाते हैं, कहते हमें वोट दीजिए, हम आप कैसे सेवा करेंगे, हम रोड बनवाएंगे, हम इमारतें बनवाएंगे, हम ये करेंगे, अर्थात वो भी सेवा करते हैं। पति पत्नी बच्चे सबका संबंध, किसी ना किसी की हम सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है सेवा करना, लेकिन वर्तमान में हम चाहते हैं स्वामी बनना, इसलिए भगवान हमें इस भौतिक जगत में भेजते हैं, जिस भौतिक जगत का संचालन भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है। और माया शक्ति का अर्थ है मा अयम, जो नहीं है ऐसा हमें प्रतीत करा देती है, ये भगवान की माया शक्ति। तो हालांकि हम स्वामी नहीं है, लेकिन जब हम माया शक्ति के प्रभाव में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्वामी बन गए हैं। एक घर के मुखिया को लगता है ये सब पति पत्नी, ये सब बच्चे, ये सब मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनका रक्षक हूं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। प्राइम मिनिस्टर सोचता है मैं बॉस बन गया हूं, हम कोई जमीन खरीद सकते हैं, ये जमीन मेरी है, मैं इसका स्वामी बन गया, और लड़ते हैं आपस में जमीन के लिए, कितने झगड़े होते हैं, है ना? लेकिन क्या कोई जमीन का स्वामी है? किसी भी व्यक्ति के आने से पहले भी जमीन थी, और वो व्यक्ति चला जाएगा तभी जमीन रहेगी। अगर आपकी थी तो आपके साथ जानी चाहिए थी, तो जमीन तो किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी हम झगड़ते हैं, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन। ये दिखाता है कि कैसे हम माया के द्वारा वशीभूत होकर के सोचते हैं कि हम स्वामी बन गए। तो ये भौतिक जगत की संरचना भगवान करते हैं ऐसे जीवों के लिए जो भगवान का विद्रोह करके, उनकी सत्ता का विद्रोह करके, भगवान की सेवा न करने की इच्छा से खुद भगवान बनने की इच्छा करते हैं, उनके लिए भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। ठीक है, जाओ भोग करके देखो, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करके देखो, कहीं तुम सुखी रह पाते हो देखो। तो भगवान कृपालु हैं, हमें चांस देते हैं। जैसे एक पिता बच्चा जिद कर रहा है कार खरीदने का, छोटा बच्चा है, पिता जानते हैं कि ये कार नहीं चला सकता, लेकिन बच्चा जिद कर रहा है, नहीं नहीं मुझे तो कार ही चाहिए। तो पिता उसको एक छोटा खिलौना कार ला के देते हैं, ठीक है बेटे ये लो कार, और बच्चा सोचता है हाँ अभी कार आ गई, और उसको खिलता है। तो ऐसे ही ये बहुत ही जगह एक खिलौना है जो भगवान हमको देते हैं, ये खिलौने हम खेल रहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं आप देखिए, तो वो एक बच्चों के खिलौने की तरह से है। जो छोटे बच्चे समुद्र के तट पे जाते हैं तो रेत के घर बनाते हैं और सोचते हैं कि घर बन गया, और गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, उसमें शादियां भी होती हैं, उसमें दावत भी होती हैं, सब होता है ना। लेकिन जो बड़े होते हैं वो जानते हैं कि खेल है, ये ज्यादा लंबे समय नहीं चलेगा। जब शादी होती है गुड्डे गुड़िया खेल होता है, 2 घंटे चलता है, लेकिन जब फिर भूख लगती है तो वापस मम्मी के पास आना पड़ता है, अभी भूख लगी है, तो माँ कहती है ठीक है अभी खेल बंद करो, अभी खाना खाने बैठो। तो उसी प्रकार से हम लोग ये खेल खेल रहे हैं ये जीवन में। कोई व्यक्ति कोई पति बन जाता है, कोई पत्नी, कोई बड़ा आदमी, कोई छोटा आदमी, सब ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ समय के लिए खेल है। लेकिन हम कभी भी इन खेलों के द्वारा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये हम सब अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कभी किसी को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, क्षणिक क्षणिक सुख मिलता है। तो ये मृग मरीचिका के समान है। जैसे रेगिस्तान में एक हिरण को दूर से दिखता है पानी है, क्या वास्तव में वहां पानी होता है? पानी नहीं होता है, पानी का मात्र एक भ्रम होता है। और ये जो मृग है वो उस पानी के पीछे भागता है सोच करके कि वहां पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो पानी और दूर चला जाता है, फिर और आगे जाता है, फिर और पानी दूर चला जाता है। ऐसे वो पानी की तलाश में उसके पीछे भागता रहता है, और भागते 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 मर जाता है, तो उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में हम सभी अपनी वास्तविकता को भूलकर, भगवान को भूलकर, जो ये भ्रमित सुख है, मायाजनित सुख है, इंद्रिय सुख, ये मायाजनित सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है आत्मा का, क्योंकि क्षणिक है ये, कुछ समय रहने वाला है और फिर समाप्त हो जाने वाला है। हम ऐसे सुख के पीछे भाग रहे हैं जिसमें भागते भागते हमें कभी वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें अपनी बीमारी की जड़ को समझना होगा, हमें खुद भोग करने की इच्छाओं को त्याग करके, हम भगवान के सेवक हैं इसलिए भगवान की सेवा करने की इच्छा करने के लिए तैयार होना होगा। जब तक हम ये सेवक, भगवान का सेवा बनने की इच्छा नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत धाम कभी नहीं जा सकते। तो ये है वास्तविक कलमश हम सबके हृदय में। तो मार्ग का सार है, भगवत धाम जाने के मार्ग का सार है कि भोग वांछा, भोग की करने की इच्छाओं को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा को हृदय में पनपाना। तो हम सोचते ये रहे हैं कि इंद्रिय भोग से सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में हम सुखी होंगे भगवान की सेवा करके। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्र में दिया गया है, यथातरोर मूल निशेष नैना तृप्यंत यति स्कंद भुजोपशाखा। अगर हमें किसी पेड़ में पानी देना है, पेड़ में फल लगे हैं, उन फलों को पानी पहुंचाना है, तो पानी हमें कहां देना होगा? जड़ में देना होगा। कोई सोचे पानी तो फल को चाहिए, तो क्यों ना मैं सीधे फल को पानी दूं, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार से ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये सब दिन भर काम करते हैं, इनको शक्ति चाहिए। अगर ये हाथ पैर सोचने लगे कि सारे दिन हम काम तो हम करते हैं और ये खाता है पेट, तो अभी खाना पेट की जगह हम लोग खुद ले लेंगे और खुद अपने शरीर के सब अंग जो है अपने ऊपर सब्जी चटनी रोटी लगाने लगे, तो क्या उनको शक्ति मिलेगी, पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको खाना पेट को ही देना पड़ेगा, और जब वो पेट को देंगे तो पेट स्वाभाविक सब अंगों को अपने आप खाना पोषण दे देगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, स्वतः। उसी प्रकार से जैसे ये सभी अंग शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सब भी भगवान के अलग अलग अंग हैं, अंश हैं। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं तब स्वतः हम आत्मा जो है हम संतुष्ट होते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सभी जगह पानी पहुंचता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा संतुष्ट होती। ये अज्ञानता पूरे संसार में व्याप्त है, यही सभी दुखों का मूल कारण है। कि हम सोच रहे हैं इंद्रिय भोग में सुख है, लेकिन वास्तव में सुख है भगवान की सेवा में। और वो भी कैसी सेवा? तो सेवा तो कई लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए तो इतना रुपया चढ़ाऊंगा, मन्नत मांगते हैं। तो वो सेवा कैसी हुई? वो व्यापारी की, व्यापारी व्यापार हुआ, व्यापार मतलब ही व्यापार हुआ, बिजनेस, भगवान से बिजनेस करते हैं। ठीक है, भगवान आप मेरा ये करो तो देंगे, आप मेरे को 1 लाख दो तो 50,000 देंगे, और भगवान 50,000 देते हैं तो 50,000 तो रख लेते हैं, बोले 50,000 दिया तो क्या करें, तो फिर अपने पास ही रख लेते हैं। तो ऐसी सेवा नहीं, वो सेवा भी अच्छा है, कम से कम वो मान तो रहे हैं कि भगवान देने वाले हैं। तो जो भगवान को मानते ही नहीं है, नास्तिक है, उनसे तो अच्छे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है। तो भक्ति क्या है? निस्वार्थ, अन्याभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्म अनागतम, अहितु की अप्रत्यता भक्ति। जिस भक्ति के, जिस सेवा के पीछे रिटर्न में कुछ पाप प्राप्त करने की इच्छा ना हो, केवल इच्छा भगवान को संतुष्ट करने की हो, ऐसी सेवा को शुद्ध सेवा कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति करने से ही आत्मा प्रसन्न होती है, उसका और कोई खुराक नहीं है आत्मा। जब हम इस स्तर में पहुंचेंगे कि हम, हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, जिस प्रेम वश हम भगवान की सेवा करेंगे, तब आत्मा संतुष्ट होगी। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। अभी हमें प्रेम है बहुत चीजों से, संसार में बहुत अच्छी चीजों से हमको प्रेम है, अपने सगे संबंधियों के प्रति प्रेम है, अपने पैसे के प्रति प्रेम है, घर के प्रति प्रेम है, कार के प्रति प्रेम है, और कुछ नहीं है तो घर में पालतू कुत्ते के प्रति प्रेम है, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रेम के विषय हैं। लेकिन ये वास्तव में प्रेम नहीं, क्योंकि ये निस्वार्थ नहीं। मां और बच्चे का प्रेम इस भौतिक जगत में उपलब्ध प्रेमों में वास्तव में उनके सबसे नजदीक है, वो सबसे नजदीक है निस्वार्थ के, लेकिन वो भी पूर्ण शुद्ध नहीं। शुद्ध प्रेम केवल जीव और भगवान के बीच में ही संभव है, नहीं तो बाकी सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। इसलिए देखते हैं हम सब संबंध टूट जाते हैं। प्रेम विवाह आजकल बड़ा फेमस है, प्रेम विवाह होता है लेकिन फिर डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स कैसे हुआ? इसका मतलब प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। इसी प्रकार से हर इस भौतिक जगत के हर प्रेम में स्वार्थ है, तो वो वास्तव में काम है, वो प्रेम नहीं है। वो काम है जो हमें प्रेम लगता है, लेकिन प्रेम है आध्यात्मिक जगत में, जो प्रेम जीव और भगवान के बीच में है, तो वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, भगवत प्रेम, निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो जब हम भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं, तब इस भौतिक जगत को त्यागने के बाद जब हमारा देह अंत होता है, तब निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं, हमारे को आध्यात्मिक शरीर के लिए हम तैयार हो जाते हैं जब हम भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। इसीलिए अंत समय में जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है, वो अंत समय में स्वाभाविक रूप से भगवान का ही स्मरण करता है, क्योंकि अभी उसे भगवान के अलावा किसी से प्रेम नहीं, भगवान के प्रति उसे लागनी है। और वास्तव में जिसको भगवान से प्रेम होता है, उसे ही बाकी सबसे प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि भगवान से प्रेम करने का मतलब बाकी सबसे हमें कोई संबंध नहीं है, नहीं, भगवान से प्रेम होने पर ही वास्तव में सबके प्रति प्रेम होता है, न केवल मनुष्य के प्रति बल्कि जानवर और जीव सबके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। किस आधार पर? जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम मिलता है, वो जानता है कि ये सब जीव मेरे भाई हैं, हम सभी भाई हैं, और वास्तव में हम सभी भगवत प्रेम के विरह में, के ना होने की वजह से भटक रहे हैं, परेशान हैं। इसलिए एक भक्त सबको भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए प्रयास करता है, उसे अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो सबकी सेवा करता है। किस तरह सेवा करता है? सबको भगवत प्रेम प्रदान करके, उस तरफ चढ़ा करके, उसका ज्ञान दे करके, उसके लिए ट्रेनिंग दे करके, जिससे कि सभी जीव भगवत धाम जा सके। तो उसका सबसे लगाव होता है, और ये उसका लगाव, ये उसका प्रेम, क्योंकि भगवान के केंद्र, भगवान को केंद्र में रखे होता है, इसलिए वो वास्तव में प्रेम होता है, और वास्तव में सबसे बड़ी सेवा होती है। अन्य हम सेवाएं करते हैं, लेकिन वो सेवाएं शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान करने की सेवा है, वो सर्वोच्च सेवा है, क्योंकि उससे जीव जन जन्मांतर से जिस अज्ञानता की वजह से इस कष्टों के कागार में गिरा हुआ है, वो उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार हैं, श्री कृष्ण है जो कलयुग में 500 वर्ष पूर्व बंगाल में अवतरित हुए, वो कहते हैं, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका मनुष्य जीवन जिसको मिला है भारत भूमि पे, जो पुण्य भूमि है जहां राम कृष्ण अवतरित होते हैं, उसका लक्ष्य, उसका हेतु होना चाहिए जीवन का, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जीवन सार्थक करे भगवत प्रेम प्राप्त करके, और फिर पूरे विश्व भर में लोगों को प्रचार करे, भगवान की तरफ ले जाए, उनको ये विज्ञान दे। तो विशेष रूप से हम भारतवासियों का ये कर्तव्य है, मुख्य है, कि हम सब भगवत गीता, रामायण, इन सब के माध्यम से समझें अपनी वास्तविकता को, भगवत प्रेम प्राप्त करें, और पूरे संसार में इसका प्रचार करें। पूरे संसार में शांति स्थापित होगी जब भगवत प्रेम होगा। हम सब शांति चाहते हैं, सब आपस में लड़ते रहते हैं, हम सोचते हैं लड़ाई कब बंद होगा। एक भाषा वाले दूसरी भाषा से लड़ रहे हैं, एक जाति वाले दूसरी जाति से लड़ रहे हैं, ये सब लड़ाइयां कब बंद होंगी? जब सबका केंद्र भगवान होंगे, सबके जीवन का लक्ष्य जब भगवान की संतुष्टि होगा, तब इस आधार पर सबके बीच में मैत्री स्थापित हो सकती है। तो ये रहस्य है मनुष्य जीवन के अंतर्गत, जो हमें समझना है, जीवन अपनाना है, कि हम सब भगवान के भक्त हैं वास्तव में, जिसे हम भूल गए हैं, तो अभी हमें उसे वापस अपने हृदय में स्फुरित करना है। इसको कहते हैं योग। योग शब्द हम लोग सुनते हैं, तो योग जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कुछ शीर्षासन, कुछ प्राणायाम इत्यादि, लेकिन वास्तव में योग का अर्थ है मिलन। जब हम जीव भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं, या जो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम वो संबंध स्थापित करते हैं, उसे योग कहते हैं। इस योग के अंदर हमने बताया अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो जो प्राणायाम है या जो अष्टांग योग है, वो एक स्टेप है। ये योग एक सीढ़ी की तरह से है, जिस सीढ़ी में सबसे सर्वोच्च स्तर है, अंतिम गंतव्य है सभी योगों का, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, हृदय में पनपे, वो सभी योग साधनाओं का अंतिम निचोड़ है, अंतिम लक्ष्य है। उस मार्ग में ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि क्रम है, स्टेप्स हैं। तो हमने सुबह थोड़े समय के लिए चर्चा की किस प्रकार से अलग अलग युगों में अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रावधान था। तो सतयुग में क्या विधि थी? सतयुग के जीवों के लिए अष्टांग ध्यान योग, क्योंकि आयु बहुत बड़ी होती थी, बहुत पवित्र वातावरण था, एकांत चित्त होकर के भगवान का ध्यान करते थे, और उसके लिए ध्यान योग के लिए विधि बताई गई है, उसमें एकांत से जाना होता है, शहर में रह करके इस ट्रैफिक की आवाजों के बीच में और ऑफिस और घर की चिंताओं से ग्रस्त होकर के हम क्या ध्यान करेंगे। एक माता हमको बता रही थी, हम ध्यान करने बैठते हैं तो फिर रसोई में ध्यान चलाता है, बच्चों में ध्यान चलाता है। तो कलयुग में जीवों के लिए 10 मिनट, आधे घंटे भी एक जगह पर बैठना और कुछ चीज सुनना ध्यान से, बहुत मुश्किल है, मन बहुत विचलित रहता है सबका। ये कलयुग का लक्षण है जिसकी भविष्यवाणी भागवत में हुई है कि कलयुग में ऐसा होगा। उपदिता कलयुग में बताया गया है प्रायण अल्पायुष, लोगों की आयु बहुत कम होगी। मंद सुमंद मतयो, आध्यात्मिक विषय में रुचि नहीं होगी लोगों की, और होगी तो उनको पथ भ्रष्ट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे और सबके मन बड़े चिंतित रहेंगे, विचलित रहेंगे। तो वर्तमान समय में ये जो ध्यान साधना की विधि है जिसमें एकांत स्थान पर जाओ, आसन पर बैठो, और जंगल में तो बहुत सारे जानवर होते हैं तो जानवरों से कोई डर नहीं होना चाहिए, तभी हम ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो मन तो हमें चिंता में रहे कहां से शेर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, ये सब कठोर नियम है ध्यान करने के लिए, आसान नहीं। ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट योगा क्लास में जाकर के किसी लाइट के ऊपर ध्यान करें तो ये हमारे को अष्टांग योग हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर हमें अष्टांग योग पद्धति को पूर्ण रूप से अपनाना है तो उसके बहुत कठोर नियम है। पारिवारिक जीवन में रह करके, शहर में रह करके ये अष्टांग योग पद्धति नहीं होती, तो ये सतयुग का कार्य है। फिर द्वापर में हमने देखा यज्ञ, तो ये महान महान यज्ञ करना ये भी कलयुग के लिए संभव नहीं है, ना तो मंत्र उच्चारण करने के लिए योग्य ब्राह्मण है। आजकल यज्ञ होते हैं और यज्ञ के बीच में टी ब्रेक होता है, और यज्ञ के बीच में ब्राह्मण वो यज्ञ की अग्नि से ही बीड़ी सुलगाते हैं, तो अभी ऐसे यज्ञों का क्या फल होगा जहां पर ब्राह्मण बीड़ी और चाय पी रहे हों। और पहले यज्ञ होता सबको यज्ञ का प्रसाद मिलता था, अभी सबको चाय वितरित की जाती है जो नशा है। तो कलयुग में यज्ञ से भी भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और हमने पहले बताया घी अनाज की कमी, खाने के लिए भी घी नहीं। और इसी प्रकार से द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का आयोजन वो भी संभव नहीं। तो कलयुग के लिए है शास्त्र में, शास्त्र के द्वारा बताया गया, क्या कहा गया है शास्त्र में, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में नास्ति एव मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार बोले। कोई भी चीज को 3 बार बोलने का अर्थ है बिल्कुल फिक्स, उसमें कोई शंका नहीं, उसको और कोई विकल्प नहीं, नहीं नहीं नहीं, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है अलावा किसके, हरेर नाम, हरि नाम, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, ये भगवान विष्णु तत्व, ये सब भगवान हैं। देवतागण देव हैं, जैसे हम इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव जी, ये सब देवतागण हैं। महादेव हैं शिव जी, देवताओं में प्रमुख। ये विष्णु तत्व नहीं है, ये देवतागण है। देवतागण भगवान के प्रतिनिधि हैं इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एक व्यापार के लिए है, एक रक्षा के लिए है, ऐसे ही इस भौतिक जगत का मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की नियुक्ति की जाती है, वरुण देव, इंद्रदेव इत्यादि इत्यादि। तो कीर्तन पर किसका कीर्तन, हरि कीर्तन। शास्त्रों में उल्लेख किस कीर्तन का है, हरि कीर्तन, नारायण विष्णु राम कृष्ण इनका कीर्तन। देवतागण को हम सम्मान देते हैं क्योंकि वो महान है, प्रतिनिधि है, संचालन करते हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं है हमें मुक्ति प्रदान करना। शिवजी पार्वती जी को बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदाता, मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल हरि विष्णु है। तो सबका अपना अलग अलग कार्य है, तो देवताओं का कार्य नहीं है हमको मुक्ति प्रदान करना। हमारा शाश्वत संबंध जो है वो है भगवान विष्णु के साथ। दुर्गा जी, दुर्गा जी कौन है, इस दुर्ग की स्वामिनी है। दुर्ग मतलब जेल, हमने पहले बताया ये भौतिक जगत एक जेल के समान है, तो वो इस भौतिक जगत की जेलर है। हमको सबको यहां कंट्रोल रखने के लिए, हम भाग ना जाएं भगवत धाम, हम जले जब तक सुधर नहीं जाएं तब तक हम छूटे नहीं, ये कार्य है दुर्गा जी का। तो दुर्गा जी भी भगवान की सेविका है, जेलर है। तो हम यदि जेलर को कुछ अच्छा व्यवहार करेंगे उनको, तो जेलर हो सकता है हमें कुछ सुविधा देंगे जेल में, ठीक है आप ऐसा करो, बाकी सभी कैदी तो प्रिजन में सेल में रहते हैं, आप लोग सुधरे हो ठीक है, आप अच्छा काम करते हो तो आप आके मेरे गार्डन में थोड़ा गार्डनिंग करो, ऐसा कुछ काम दे सकते हैं। लेकिन जेल से बाहर निकाल नहीं सकती हो, वो उनका कार्य नहीं है जेल से निकालने का। जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी तब तक जेलर किसी कैदी को नहीं निकाल सकता, केवल प्रेसिडेंट निकाल सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो कर, सरकार चाहे तो कर सकता। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु के चक्र से यदि कोई हमें निकाल सकता है तो वो केवल हरि श्री कृष्ण श्री राम है। इसीलिए शास्त्रों के अंदर जो कीर्तन है वो है हरि कीर्तन, हर हर नाम, और विशेष रूप से कलिशंतरमा उपनिषद है जिस उपनिषद में बताया गया है, ब्रह्मा जी जिसमें बताते हैं कि इति शरोषकम नामना कलि कलमश नाशनम नता परतर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है षडोषकम नाम नाम, 16 शब्दों का जो महामंत्र है, सभी शास्त्रों में मैंने अध्ययन कर लिया है, सभी शास्त्रों को देख लिया है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं जो सभी वेदों को भगवान से श्रवण करके आगे हम तक पहुंचाते हैं। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी वेदों को जानने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला है कि इस कलयुग में कलयुग के कलमश को, हृदय की गंदगी को साफ करने का और कोई अच्छा उपाय नहीं है, सबसे सर्वश्रेष्ठ एकमात्र उपाय है ये 16 शब्दों का महामंत्र। क्या है ये? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र कहलाता है। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को केंद्रित करे, नियंत्रित करे। तो ये जो हरे कृष्ण ध्वनि है, जब हम इस मंत्र का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, तो ये जो हरे कृष्ण ध्वनि है, महामंत्र की ध्वनि है, ये हमारे कानों से अंदर जाती है, हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमारे हृदय को काम क्रोध लोभ जितने भी शत्रु हमारे हृदय में बैठे हैं उन सबसे शुद्ध करती है। ये जितनी भौतिक काम वासनाएं भौतिक वासनाएं हमारे हृदय में है वो सब धीरे 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 चली जाती है। और फिर जो हमारा मन निर्मल हो जाता है, जैसे जैसे निर्मल होता है वैसे वैसे हमें साक्षात्कार होता है कि हाँ मैं शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं, हाँ हम भगवान का दर्शन करते हैं, स्पष्ट अनुभूति करते हैं भगवान की। तो भगवान उत्सुक है कि हम भगवान के साथ खेलें, भगवान से बातें करें, भगवान के उत्सुक हैं। हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हम उत्सुक नहीं है। भगवान तो भगवद्गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से बार बार आके बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा, मेरी शरण में आओ, समझो ये भौतिक जगत में तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, मेरे वापस धाम आओ। पिता की तरह से जैसे एक बच्चा अपने पिता को छोड़ के चला जाए, मैं तो अपना अलग बिजनेस करूंगा, अभी पिता समझाते लेकिन नहीं मानता, ठीक है तो पिता अनुमति देते हैं, ठीक है खुद पैसा देते हैं बिजनेस के लिए, खुद मकान देते हैं, ठीक है जाके रहो बिजनेस करो, लेकिन पिता की तो इच्छा क्या है कब वो लड़का वापस आ जाए। और जब बच्चा बिजनेस कर रहा है लेकिन बहुत अमीर बाप का बच्चा है लेकिन व्यर्थ ही भटक रहा है, अभी बड़ी बुरी हालत में है, सड़क पर फटे हाल घूम रहा है, भूल करके कि उसके पिता तो कितने रईस आदमी है, तो फिर कोई उसका जो पिता का मित्र है वो मिल जाता है और देखता है ये मेरे मित्र का पुत्र इस दशा में है, ऐसी दशा में है क्यों, तो वापस उस लड़के को ले जा करके अपने घर छोड़ देता है कि बेटे तुम पिता के प्रति जो तुम्हारी दुश्मनी है उसको छोड़ो, तुम वहीं सुखी रहोगे, वापस ले आता है। और पिता बड़े हर्ष से उसको स्वीकार करते हैं, भले ही बेटा उसको छोड़ के चला गया लेकिन पिता हमेशा उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि हम भगवान को छोड़ करके उनको, हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते ऐसा इच्छा करके उनको छोड़े, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, भगवान हमेशा हमारे साथ हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और हमेशा हमको गाइड करते हैं। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उसके अनुरूप हमको अलग अलग शरीर प्रदान कराते हैं और हमको उस इच्छाओं के अनुरूप हमें क्या कार्य करना है वो बताते हैं और अपनी वास्तविक इच्छा को भी बताते हैं भागवत गीता के माध्यम से, संतों के माध्यम से, कि ये सब जो रहे हो इससे कभी सुखी नहीं होगी। अभी ये सब अपने भ्रम को, खेल को छोड़ो और वापस मेरे धाम आओ, मेरी शरण में आओ। तो ये है भगवान का संदेश भगवद्गीता का। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के अंत में, इदम गुह्यतम ज्ञानम, ये गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, परम गुह्य ज्ञान सुनो। हा? तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं कि मन मना भव मद भक्तो मद व्याजी माम नमस्कुरु मामेव श्री सत्यम ते पतिजानी भक्तो प्रियो सिने। मैं तुम्हें शपथ देता हूं, आई प्रॉमिस यू कि अगर तुम ये चार चीज करोगे तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। तुम मेरे प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें प्रॉमिस दे रहा हूं। क्या है वो चार चीजें? मन मना, हमेशा मेरा स्मरण करो। मद भक्त, अब स्मरण कौन करेगा? जब मित्र होगा तभी स्मरण करेगा, जब भगवान के साथ उसका मैत्री का संबंध होगा, भक्त होगा यानी। तो मन मना भव मद भक्त मद व्याजी, मेरी पूजा अर्चना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ऐसा कर तुम करोगे तो निश्चित रूप से मेरे धाम आओगे। तो ये है भक्ति योग, अर्थात भगवान से प्रेम उत्पन्न करने का मार्ग, जिसका प्रारंभ होता है श्रवणम से। भक्ति के नौ अंग हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। प्रथम तीन है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, और फिर उसके बाद दास्यम, अर्चनम, पूजनम, सक्षम, आत्मनिवेदनम, तो वंदनम। तो ये नौ विधा भक्ति, नौ प्रकार। सबसे प्रथम चरण है श्रवणम, सुनना। किसके विषय में सुनना? भगवान के विषय में सुनना, न कि सिनेमा सॉन्ग सुनना, सिनेमा के गाने सुनना। हर व्यक्ति सुनने के लिए उत्सुक है, सही है ना? हम सुबह से उठते ही कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, टीवी ऑन करते हैं सुबह उठते सबसे पहले, या टेप रिकॉर्ड या म्यूजिक, तो सुनना चाहते हैं। आपस में दो लोग मिलते हैं तो तुरंत वार्तालाप शुरू आती है, एक बोलता है सुनता है। तो भौतिक जगत में सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ये भौतिक चीजें सुनने से हमारा इस भौतिक जगत में बंधन और अधिक बलिष्ठ हो जाता है, और भगवान के विषय में सुनने से ये बंधन खत्म हो जाता है और भगवत धाम जाने का रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक किसका श्रवण करना चाहिए? भगवान के विषय का श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य नामों का श्रवण करना चाहिए। सब लोग सोचते हैं भगवान के दर्शन कब होंगे, लेकिन भगवान के दर्शन इन आंखों से नहीं होते हैं, ये आंखें अयोग्य हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इसलिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए कि हमारी आंखें नहीं हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन इन आंखों से नहीं होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं कानों से। इसलिए भगवान को देखने का मार्ग है श्रुतेक्षितः पंथा, भगवान को सुनने से देखा जाता है। भगवान के विषय में सुनने से जब हृदय साफ होता है तब उस साफ हृदय से, साफ हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, तब हम अपने अंतःचक्षु से, आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान का दर्शन करते हैं। वर्तमान में जो हमारी ये आंखें, ये जो अन्य इंद्रियां हैं, ये भौतिक हैं, इनसे कभी भगवान का अनुभूति नहीं होती है, इनसे भगवान की अनुभूति नहीं होती है। भगवान की अनुभूति होती है आध्यात्मिक इंद्रियों से, जो वर्तमान में इन भौतिक इंद्रियों से ढकी हुई है। तो भक्ति मार्ग से, भगवान का श्रवण कीर्तन से हम शुद्ध होते हैं, अर्थात ये जो आवरण है भौतिक इंद्रियों का, ये नष्ट होता है। जैसे एक कांच, शीशा, आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी धूल जमा है, तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन यदि आप उस धूल को साफ करेंगे तो फिर आप अपना चेहरा देख पाएंगे। उसी प्रकार से जब हमारा हृदय ये भौतिक कलमश पे साफ हो जाता है, तब उस साफ हृदय में हम भगवान को देखते हैं अपनी दिव्य इंद्रियों से, उनकी अनुभूति करते हैं साक्षात, तब हमें कोई शंका नहीं रह जाती कि भगवान है कि नहीं है, तब हम स्पष्ट अनुभूति करते हैं भगवान की, भगवान से हम आगे चलकर बात भी करते हैं, साक्षात उनका दर्शन करते हैं, और फिर अंत में ये देह त्याग करके भगवत धाम जाते हैं। यहां जाने के बाद भगवान गारंटी देते हैं कि आपको मेरे इस वापस इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम, सुनना। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने 24 घंटे में एक नियम बनाए कि मैं इतना समय भगवान के विषय में सुनूंगी या सुनूंगा। तो भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, ये भगवत गीता है भगवान के निर्देश और श्रीमद् भागवतम है भगवान की लीलाएं, इनका श्रवण और भगवान के नाम का श्रवण हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा। इसलिए हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन हमारे इस्कॉन के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये सदी सदियों से चला आ रहा भगवान के नाम का अधिकृत एक मंत्र है, हाँ, जिसका उल्लेख शास्त्र में हुआ है। तो हम सभी को चाहिए कि नियम बनाए कि हम प्रतिदिन इतनी माला हरे कृष्ण महामंत्र की करेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान का नाम ले पाए, भगवान का स्मरण कर पाए, लेकिन प्रारंभ में ये संभव नहीं है। इसलिए हम कोई नियम लें कि हम चार माला, माला अर्थात 108 मंत्र की होती है, अर्थात कोई ना कोई नियम लेकर के नाम लें। तो ये माला यहाँ पर भी हम लोग लेके आए हैं, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और शायद आपके पास हो भी। तो इस तरह से इस माला के ऊपर हमें ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे इस माला के ऊपर आप प्रारंभ कर सकते हैं, एक माला, दो माला, चार माला, किसी से भी। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं श्री प्रभुपाद, उन्होंने कहा कि इस कलयुग में वर्तमान समय में कम से कम 16 माला करने से कम थोड़ा स्वस्थ रहेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से। लक्ष्य तो है और बढ़ाना, पर कम से कम 16, लेकिन आप प्रारंभ कर सकते हैं 2-4 जितनी बात चाहें। तो हमारी आप सभी माताओं से ये विनती है कि कृपया आप ये हरे कृष्ण मंत्र का जप अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए। आज से प्रारंभ करें, एक माला दो माला नियम लें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं और स्वयं इसका प्रभाव अपने ऊपर देखें। अगर आप कुछ दिन तक नियमित रूप से जप को करेंगे तो आप, एक प्रश्न पूछा गया था, कैसे पता लगेगा कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही। तो भक्ति मार्ग बहुत ही सरल और ऐसा मार्ग है जिसमें आपको खुद पता लगेगा कि आपकी प्रगति हो रही है स्पष्ट। तो क्या परिणाम होगा, आप देखेंगे कि आपका हृदय साफ हो रहा है, आप खुद अनुभव करेंगे कि काम क्रोध लोभ मोह आपके हृदय से गायब हो रहे हैं, आप खुद अनुभूति करेंगे। तो आप ये करके देखिए, कोई नुकसान है इसमें, कोई पैसा अभी नहीं लगता, इसके लिए केवल जीवा चाहिए बस, और कान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कितना भी कोई गरीब हो तो भी कर सकता है, तो इतना सरल उपाय है। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है एक्चुअली, बहुत ही जगत में पैसा प्राप्त करना मुश्किल है लेकिन भगवत प्राप्ति करना आसान है, लेकिन इच्छा चाहिए। लेकिन इच्छा तब तक नहीं होगी जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए हमारा ये अनुरोध है आप सभी से कि आप नियम लें कुछ कि मैं ये हरे कृष्ण मंत्र की हम माला करेंगे, और फिर देखिए आपका हृदय शुद्ध होता है, और साथ साथ यथासंभव इन शास्त्रों का श्रवण किया जाए। तो कोई व्यक्ति पढ़े, एक्चुअली मैं तो ये सोचा था, मुझे पता नहीं किस तरह संभव है, आधुनिक क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन यदि इन ग्रंथों का ब्रेल में किया जा सके, भगवद गीता यथारूप, जिसने पूरे संसार में आज रशियन, जर्मन, अमेरिकन, भगवदगीता तो है लेकिन ये भगवदगीता यथारूप, भगवदगीता अनेक हैं, लेकिन भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि भगवदगीता के मर्म को जानने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ेगा। गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले आचार्यों से इसको सुनना होगा। वर्तमान समय में दुर्भाग्यवश जो अनेक टीकाएं हैं वो स्कॉलर्स द्वारा लिखी हुई हैं, पंडितों द्वारा, जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, लेकिन भक्त नहीं है। तो वो उसको एकेडमिक दृष्टि से लिखते हैं, वो खुद भक्त नहीं है, इसलिए वो भक्ति को नहीं देख सकते हैं। इसलिए आप देखिए ये भगवद्गीता यथारूप श्री प्रभुपाद जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं भगवान जैसा बताए हैं, तो उनकी भगवद्गीता को पढ़ करके रशियन जर्मन जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी भगवान कृष्ण का नाम नहीं सुना, आज वो लोग भारत में आकर पूरे विश्व में भगवद्गीता का प्रचार करते हैं, पूरा जीवन भगवद्गीता के प्रचार के लिए समर्पित करते हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में। तो ये प्रमाण है कि ये जो भगवद्गीता यथारूप है ये अधिकृत है, क्योंकि प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं। ऐसी चार परंपराएं हैं शास्त्रों में, इसका बखान है, उनमें से एक परंपरा में श्री प्रभुपाद आए हैं। तो यहां पर जो उपस्थित अधिकारीगण हैं, बाद में हम इसमें से और चर्चा कर सकते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है थोड़ा यदि उस पर विचार करें, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है जिनसे हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, उसमें जीवन आ रहा है। तो इस विषय पर यदि और विचार किया जा सके कि इन ग्रंथों को कैसे ब्रेल में उपलब्ध कराया जा सके, तो ये सभी के लिए बहुत ही एक उत्तम कार्य होगा, जिससे वो इसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाकर इसी जीवन के बाद भगवत धाम जाएंगे निश्चित रूप से। हरे कृष्ण। सीडी भी है, सीडी सुन सकते हैं, वो भी अच्छा माध्यम है। हम हाँ अभी बनने वाली है, अभी अनुवाद केवल अनुवाद है, ऐसी है अनुवाद और श्लोक, लेकिन पूरी भगवद्गीता का तात्पर्य के साथ भी हो तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि हमारे वहां पर इसको हम लोग सीडी, हाँ जी सभी लैंग्वेज में है, ये 80 भाषाओं में पूरे विश्व में 18 से 18 अध्याय सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो आप में से जिनको भी ये पूरी भगवद्गीता सीडी में चाहिए, MP3 सीडी में, तो भी आप हमको बता सकते हैं, तो हम कितना सीडी बनवाए हम बनवा के भिजवा सकते हैं। ऐसा भी होता है अधिकारीगण इस विषय में कुछ आय कर सकते हैं, जिन माताओं को ये भगवद्गीता की सीडी तो हम अपने वहां पर इस प्रकार से जब बनेगी तब उस प्रकार से बनवा सकते हैं, पता रहे कितने लोगों को चाहिए तो कर सकते हैं उसके विषय में। वर्तमान में यहाँ पर सीडियां कुछ उपलब्ध हैं लेक्चर्स की, वो आप देख सकते हैं बाद में। अभी प्रश्न उत्तर थोड़ा हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, कुछ माताओं का प्रश्न है तो 5 मिनट के लिए। और ये माइक यहाँ है, हाँ कंप्लीट हो गया। ऑडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट अभी तो अच्छा हाँ। तो माता जी का प्रश्न है कि किसी ने कोई शिव भक्त है तो वो कृष्ण भक्ति करें तो क्या वो शिव जी को छोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न है छोड़ने का या अपनाने का नहीं, बल्कि समझने का कि कृष्ण शिव कौन कौन है, उनका क्या क्या कार्य है। तो हम शिव भक्ति क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए हम जाते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। शिव जी के पास बंगला है क्या? नहीं। शिव जी राख लपेटते हैं और उनके हाथ में क्या है? डमरू है और एक क्या है, और भी कुछ है, रुद्राक्ष माला है। हमेशा शिव जी राम संकर्षण उनका उनका नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और जो उनके भौतिक जगत के भक्त हैं, जो भौतिक चीज चाहते हैं वो उनको भौतिक वस्तु देते हैं, लेकिन खुद उस भौतिक वस्तु का भी उपयोग नहीं करते हैं, खुद तो वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए शिव जी को कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी भक्तों में महान है शिव जी। तो शिव जी भी भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए वास्तव में शिव भक्ति का अर्थ है शिव जी सबसे प्रसन्न तब होते हैं जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। तो शिव जी का कार्य है भौतिक जगत में जो लोग तमोगुण के अंदर हैं उनका नियंत्रण करना, ये शिव जी का कार्य है। जो तमोगुण से आच्छादित हैं ऐसे जीवों को कंट्रोल में रखना वो शिव जी का कार्य है। तो यदि हम शास्त्रों के माध्यम समझें तो हम शिव जी को प्रणाम करें। हम कभी शिव मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो हम उनको नतमस्तक हों कि आप भगवान के महान भक्त हैं, इस प्रकार से हम उनकी स्तुति करें। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, भक्ति एक शाश्वत संबंध की बात है, वो जो पिता और पुत्र का जो संबंध है वो संबंध तो कृष्ण और हमारे बीच में है, शिव जी का भगवान का भी वही संबंध है। तो इसीलिए भक्ति की जहां बात आती है तो वो तो भगवान विष्णु या कृष्ण राम और जीव के बीच में ही होती है। लेकिन हमें शिव जी को महान सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। वो सभी देवों में महान है, वो खुद महान भक्त हैं। लेकिन जहां भक्ति की बात आती है तो भक्ति तो श्री कृष्ण या राम के लिए ही होती है। इसलिए अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो शिव जी नाराज नहीं, शिव जी महान प्रसन्न होंगे। शिव जी कहते हैं मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने श्री कृष्ण के भक्त हैं, यानी ये शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि भगवान शिव जी स्वयं भक्त हैं। इसलिए ये तो एक भौतिक विचारधारा है कि जैसे मानो सभी में आपस में युद्ध चलता रहता है, ऐसा नहीं है। वहां कोई शुद्ध नहीं है, सभी देवता भगवान के दास हैं। विष्णु भक्त स्मृत देवा, देवता की डेफिनेशन परिभाषा ही है विष्णु भक्त, जो विष्णु के भक्त हैं वही देवता कहलाते हैं। तो इसलिए शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे यदि हम श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे। हरे कृष्ण। हाँ जी, माइक हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व आए, राम जी त्रेता में आए, तो उससे पहले जो ऋषि मुनि थे वो किसका नाम का जप करते थे? बैठिए बैठिए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग होते हैं, एक युग में 4 यानी कली द्वापर त्रेता सतयुग को मिलाकर के एक युग बनता है। ऐसे 1000 युग होने पर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, ऐसे उनकी 12 घंटे की रात होती है, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार श्री कृष्ण आते हैं। तो वर्तमान समय में जो श्री कृष्ण आए 5000 वर्ष पूर्व, उससे पहले 1000 युग पहले भी श्री कृष्ण आए थे, उसी प्रकार से श्री राम। तो ये जो वर्तमान कलयुग है ये पुनरावृत्ति होती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर दोबारा, साइकिल की तरह से है, चक्र की तरह से है। जैसे सूर्य अभी यहां है, अभी थोड़ी देर बाद अस्त हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा कल उदय होगा, फिर अस्त होगा। ऐसे ही ये सभी अवतार जो हैं भगवान श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ये बार बार आते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है जैसे हमारे शास्त्र 5000 वर्ष पूर्व को लिखित रूप दिया गया, लेकिन उससे पहले भी श्रुति रूप में सुन करके शास्त्रों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आता था। ये शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से है। जब ब्रह्मा जी सबसे पहली बार उत्पन्न होते हैं, सृष्टि का ही बार बार प्रलय उत्पन्न होता है, हर बार जब भी सृष्टि का सृजन होता है तब प्रथम जीव जो होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। और वो ब्रह्मा जब पैदा होते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ अंधकार है और कोई नहीं, तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्यों है, कहां से प्रकट हुए हैं। और वो एक कमल पुष्प पे उत्पन्न होते हैं और अपना उद्गम जानने के लिए तलाश करते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलता है। फिर वो उन्हें शब्द सुनाता है, तपा तपा तपा, और तपस्या में रखते हैं भगवान की प्रेरणा से। और तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गोविंद उनके हृदय में ये शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। फिर उनको दर्शन होता है गोलोक धाम का, भगवान का, और उनका कार्य क्या है, उन्हें सृष्टि का सृजन करना है, कैसे करना है, सब शक्ति इनको प्राप्त होती है, सभी वेदों का ज्ञान होता है। फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करते हैं और फिर आगे अपने पुत्र नारद, चार कुमार, इन सबको ये ज्ञान देते हैं। फिर आगे चल के सभी ऋषिगण प्रजापति उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ज्ञान धीरे धीरे आता है। और 5000 वर्ष पूर्व जब कलयुग का प्रारंभ होता है तो उस समय इस ज्ञान को लिखित रूप देने की आवश्यकता होती है। उससे पहले सब लोगों की स्मरण शक्ति इतनी होती है, एक बार सुना याद हो गया। लेकिन अभी कलयुग में जब देखते हैं व्यासदेव की आने वाला समय कलयुग आ रहा है, लोगों को स्मरण शक्ति नहीं होगा, तब इसी ज्ञान को वो बढ़ाते हैं, विस्तृत करके लिखित रूप देते हैं। तो जैसे हम देखें ध्रुव महाराज या पृथु महाराज जो आज से लाखों वर्ष पूर्व आए, कृष्ण अवतार से पहले आए, लेकिन वो भी कृष्ण का भजन करते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो हमेशा से शास्त्रों में उनका उल्लेख है। कृष्ण भगवान केवल 5000 वर्ष पूर्व ही लोगों को पता नहीं था, ऋषि मुनि शास्त्रों जाता तो सृष्टि के प्रारंभ से कृष्ण राम के विषय में जानते हैं, क्योंकि वो तो बार बार अवतरित होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल 5000 वर्ष पूर्व ही लोगों को कृष्ण के विषय में पता लगा, तो ये तो बार बार आते जाते हैं। श्री कृष्ण जब यहाँ पर अवतरित होते हैं तो स्वयं अपने दिव्य शरीर में आते हैं, दिव्य स्वरूप में आते हैं। वो उनका कोई भौतिक देह धारण करके नहीं आते हैं जैसे हम आप करते हैं। भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप में आते हैं, इसलिए भी कोई योनि परिवर्तन का प्रश्न नहीं है। भगवान और भगवान का आत्मा अलग अलग नहीं है। भगवान वो शरीर वो दिव्य है, वो कभी बुरा नहीं होता। क्या हमने कभी भगवान का सफेद बाल दाढ़ी और ऐसे कभी देखा है चित्र? तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब आयु 120 वर्ष थी, लेकिन कभी भगवान वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य स्वरूप है, वो कभी हमारी तरह से जर्जर नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक तत्वों का नहीं बना है, वो आध्यात्मिक होता है। हाँ, उनका देहांत नहीं होता है। हम भागवतम में देखेंगे कि भगवान को एक वो भेली के तीर लग करके वो दे के आते हैं, लेकिन वो ऐसे है जैसे ड्रामा लीला। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अलग अलग प्रकार की लीला करके जब जाना होता है तो एक स्टोरी बना करके ड्रामे की तरह से जाते हैं। जैसे डायरेक्टर है ड्रामे का, वो एक ड्रामा बनाए, ठीक है अभी आप एंट्री लो, अभी आप ये काम करो, और अंत में फिर आपको बंदूक लेगी और फिर आप मर जाना। तो वो तो उन्हीं के निर्देशन में होता है, लेकिन मात्र एक ड्रामे की तरह से होता है। गायत्री मंत्र सभी वेदों का सार है। ब्रह्मा जी को वो ज्ञान गायत्री, जो ज्ञान वेदों का प्राप्त हुआ वो गायत्री मंत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ, लेकिन गायत्री मंत्र जप करने के लिए योग्यता चाहिए, ब्राह्मणत्व चाहिए। गायत्री मंत्र सामान्य रूप से उच्चारण करने के लिए नहीं है, उसके लिए ब्राह्मण के गुण चाहिए। ब्राह्मण के गुण है क्षमा दमा तप प्रतीक्षा इत्यादि। इसीलिए गायत्री मंत्र शास्त्र सम्मत है, लेकिन उसके लिए पहले योग्य होना चाहिए। लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र है, ये चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में है वो इस मंत्र को करके परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जन साधारण के लिए, सभी के लिए है।
उसमें मैंने बताया कि कलयुग में विष्णु शर्मा के नाम हाँ जी उसके यहाँ कृष्ण भगवान जन्म लेंगे।
हाँ जी, हाँ जी, वो विष्णु यश नाम के व्यक्ति के यहाँ जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण कलयुग के अंत में, कल की अवतार के रूप में, कलयुग के अंत में। अभी कलयुग के 4,27,000 साल बाकी हैं, अभी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं, इसलिए वो अवतरित होंगे 4,27,000 साल के बाद, और उनके हाथ में तलवार होगी, घोड़े पर सवार होंगे और उस सबका दमन करने के लिए, क्योंकि उस समय सभी असुर फैल बच जाएंगे लगभग, तो ये उनका कार्य होगा। तो वर्तमान में जो कल्कि अवतार हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
हाँ
हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो माता जी का प्रश्न है, भगवद्गीता में श्लोक है, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना सुकृतम विभुम, ना तो मैं किसी के, हाँ, ना तो मैं किसी के बुरे कार्य के लिए जिम्मेदार हूं, ना किसी के अच्छे कार्य के लिए जिम्मेदार हूं। अज्ञान है ना आवृतम जीवम, सभी लोग जो है अज्ञानता में आवृत होकर के अलग अलग कार्य पाप कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूं। तो ये सच्चाई है कि हम जो पाप पुण्य कर रहे हैं वो माया के तीनों गुणों से प्रभावित होकर, और जिन गुणों में हम अपनी इच्छा से आए हैं, भोग करने की इच्छा से भौतिक जगत में आए हैं, इसलिए हम जिम्मेदार हैं अपने बुरे और अच्छे कर्मों के लिए और उनके परिणाम के लिए। भगवान एक जज के समान, एक जज के समान हमारे कार्यों का परिणाम हमको देते हैं, हाँ, इस भौतिक जगत में। हाँ, तो शीने पुण्य मते लोकम विशंते, अर्थात जो हम पुण्य कर्म किए हैं उसका जब फल समाप्त हो जाता है तब हमें वापस इस भौतिक जगत में आना होता है। अगर हम पुण्य किए हैं तो पुण्य कर्मों के फलों के द्वारा हम उच्च लोकों को जाते हैं, स्वर्ग लोकों को जाते हैं। अभी आप यहां से अमेरिका जा रहे हैं, आपके पास वीजा है 1 साल का, जब वीजे का टाइम खत्म हो गया तो आपको वापस भारत में आना पड़ता है। आप 10,000 रुपये ले गए हैं, 10,000 रुपये खत्म हो गए तो वापस आना पड़ता है। ऐसे ही ये पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे खत्म होते हैं। तो ये कहा गया है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंते, तो ये स्वर्गलोक के विषय में बात है, ये आध्यात्मिक जगत के विषय में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, लेकिन यदि हम स्वर्गलोक जाते हैं जो इसी भौतिक जगत का ही उच्चतम लोक, उच्च लोक है, वहां यदि हम जाते हैं पुण्य कर्म करने से, भक्ति नहीं, पुण्य कर्म, भक्ति अलग है, पुण्य कर्म अलग है। पुण्य कर्म है किसी को भौतिक स्थिति को से दान देना, कुएं खुदवाना, पेड़ लगवाना, ये सब पुण्य कर्म में आते हैं जो शरीर, भौतिक शरीर से संबंधित होते हैं। इनको करने से जो फल होता है उससे हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, ब्रह्म लोग जा सकते हैं, लेकिन वो पुण्य फलों का कार्य वो खत्म होने पर वापस इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी जगत पे आना पड़ता है। हरे कृष्ण।